अब आगे देखेंगे। पीछे बात थी अजाब की, पकड़ की, अब बात है पकड़ने वाले की। कौमों पर जब भी अल्लाह की पकड़ आती है तो उस वक्त लोग उसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। कभी उसको मदर नेचर कह देंगे, कभी उसको कोई और सबब का ज़रिया बना देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि आओ तुम्हें बताऊँ कि पकड़ता कौन है जिससे तुम गाफिल हो। तुम सख्त अजाबों का शिकार किसकी पकड़ से होते हो, जिसकी कुदरतें और जिसकी नेमतें दिन रात तुम्हारे सामने होती हैं, लेकिन तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रहते हो। तो आयत नंबर 78 से आगे तौहीद के कुछ दलाइल हैं। वहुवल्लज़ी अंशा लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, और वही तो है। ये लफ्ज़ वही तो है बड़ा खूबसूरत है, वहुवल्लज़ी। ऐसे लगता है कि कोई ढूंढ रहा था, कोई इधर से उधर भटक रहा था किसी हस्ती को पाने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको दूर क्यों देखते हो, उसको इधर उधर क्यों ढूंढते हो, वो तो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। कि जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी अक्लें। समा का लफ्ज़ सीन मी माइन से आप देखिए तो कान के लिए लफ्ज़ आता है उज़ुन, यानी फिज़िकल ईयर्स। इंग्लिश में अगर आप ईयर्स लिखते हैं, कान है उसके लिए उज़ुन आता है, लेकिन समा क्या है? लिसनिंग, हेयरिंग, सुनने की ताकत। और अगर आप इन दोनों को लिख कर देख लीजिए कि कान अगर जिस्म है तो समात उसकी रूह है। कान हो और इंसान सुन ना पाए तो हम क्या कहेंगे कि जिस्म तो है रूह नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, कान उनके बिल्कुल ठीक होते हैं देखने में, लेकिन वो सुन नहीं पाते। इसी तरह देखिए अल अबसार वियन, देखने की ताकत, कुव्वत बसारत। आँख के लिए लफ्ज़ आता है आइन, ठीक है, तो बज़ाहर आँख नहीं, उसके अंदर की चीज़ों को देखो। अवल अफ़ीदा, अफ़ीदा का लफ्ज़ फ़ुआद से है। अब लफ्ज़ दिल के लिए कल्ब आता है, जिसको आप कह सकते हैं कि फिज़िकल हार्ट इंग्लिश में जिसको कहते हैं, लेकिन अफ़ीदा क्या है? दिल के अंदर का गुदास, जज्बे, इमोशंस, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें तो अपने ज़ाहरी फीचर्स नज़र आते हैं, कभी उनके अंदर के काम करने के तरीके को तो देखो। उसने अनशा, और अनशा का लफ्ज़ वही है जिसको उर्दू में हम नशव नुमा कहते हैं, नशत अलूरा उखरा, यानी उठाना, उठान होना। कि तुमने कभी सोचा कि तुम कैसे सुनते हो, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारा दिल कैसे काम करता है? लेकिन कलीलम मा तशकुरून, बहुत कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। इस कलीलम में दो बातें हैं, नंबर एक शुक्र की मकदार भी थोड़ी है जो तुम करते हो, यानी सारे ही करते हो लेकिन थोड़ा शुक्र करते हो, और कलीलम में तुम खुद भी थोड़े हो जो शुक्र गुजार हो, यानी अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल करने वाले लोग भी थोड़े हैं और इस्तेमाल भी थोड़ा है। और देख लीजिए यही तीन अज़ा हैं जिनसे अमूमन गुनाह होते हैं, जिनसे नाफरमानी होती हैं, और इन्हीं तीन के ज़रिए इंसान अपने रब को भी पहचान सकता है। तो गोया कि इन नेमतों का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से, ये इसका शुक्र है। यहाँ तशकुरून पे दोहरा लीजिए शुक्र के तीन दर्जे, कि शुक्र बिलकल, दिल से शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने मुझे समात बसारत और ये सब कुछ दिया, और शुक्र बिललिसान, ज़ुबान से भी इज़हार करें अल्लाह तेरा शुक्र आंखें दी। आप सोचिए अगर हम नबीना होते क्या कुछ महरूम रह जाती मैं देखने से, अगर मेरी आंखें काम ना करती। आप अगर आंखें ना बीना हो जाए तो ज़िंदगी का हुसन क्या रह जाएगा? और अगर आज हमारे कान सुनने से बेजार हो जाए तो क्या हम सुन सकते हैं? और आज अगर हमारे दिल में जज्बे ही ना हो, ना मोहब्बत, ना नफ़रत, ना खुशी, ना गम, ना एक्साइटमेंट, ना कोई कुछ, बस एक डल पत्थर का पत्थर दिल है जो कह दिया कर दिया, क्या ज़िंदगी रह जाती? तो हमें इन अज़ा को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाना है। फिर आता है शुक्र बिल जवारह, इन सारी नेमतों को, इन अज़ा को नेमत देने वाले की खुशी के लिए इस्तेमाल करना। कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी वीडियोस लोग भेजते रहते हैं, नाबीना शख्स है, टटोल टटोल के मस्जिदों में जाता है और हाथ नहीं है, बाजू नहीं है। चंद दिन पहले किसी ने एक ईमेल भेजी थी कि एक शख्स है जिसके दोनों बाजू नहीं है, टांगे हैं, सब है, बिलीव मी वो सब कुछ वो कर रहा है इन दो पाँव से, यानी हाथों के बगैर वो खाना भी खा रहा है, पका भी रहा है, वो लिख भी रहा है, वो कुरान भी पढ़ रहा है, वो मस्जिद में जाके नमाज भी अदा कर रहा है। शर्म आती है उस वक्त सोच के कि हम सब कुछ रखने वाले इन नेमतों का क्या इस्तेमाल करते हैं। تو اللہ کو پانے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا کوئی سکول نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. وہ سکول کیا ہے؟ آپ کا اپنا غور و فکر اور تدبر کرنا. پھر اس کے بعد فرمائے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, پھر اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. آج بھی دیکھیے کہ کوئی چیز جب آپ نے بہت اچھی طرح سمیٹنی ہوتی ہے نا, تو پہلے اس کو پھیلاتے ہیں. یہ میری اپنی عادت ہے جس سے میں بہت تنگ ہوں. کوئی چیز ٹھیک کرنی ہوتی ہے نا, تو میں کبھی ایسے نہیں کرتی. لوگ ہوتے ہیں جہاں کھڑے ہوئے وہ کونا صحیح کرنے لگ گئے, پیکنگ کرنی ہے چلو ایک چیز پکڑی پیک کر لی. میری عادت کیا ہے, ساری چیزیں پہلے سامنے رکھتی ہوں جو اے ٹو زی ہے, پھر اس کو اس کی جگہ پہ ٹک 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 ٹک, یہ ادھر جائے گی, یہ ادھر جائے گی, ادھر جائے گی, تاکہ جہاں رکھوں مجھے بھی پتا ہو اور چیز آرگنائز رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھیلایا. آپ اپنے اوپر لکھیے, اپنا نام لکھیے, اپنے ابی ابو کا نام لکھیں. کتنے بھائی بہن ہیں آپ لکھیے, 4, 5, 6, 5, 7 ہوں گے نا ماشاء اللہ. کہاں رہتے تھے بچپن میں, اس شہر کا نام لکھیے. کس اسکول میں آپ سارے بھائی بہن پڑھتے تھے وہ لکھیے. اور آج 2014 کے 23 اکتوبر کے دن کو سوچیے, کیا وہ سارے بھائی بہن اس وقت کدھر ہیں؟ آپ خود وہاں نہیں ہیں. آپ کی ایک بہن ہو سکتا ہے دوسرے شہر چلی گئی ہوں شادی ہو کے, آپ کے دوسرے دو بھائی وہ باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہوں. پھر آپ آگے ان کی نسلیں دیکھیے, بہن کے بچے اس وقت کہاں کا ہے, بھائی کے بچے کدھر ہیں. یہ ہے ذرأکم. اللہ نے ہم سب کو پھر ایسے چھٹے, جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھٹا مارنا, ذرا کے لفظ میں ایسے ہوتا ہے کہ پکڑ کے یوں بکھیر دینا, ٹڈیوں کی طرح پھیل جانا. یہ جو ذرہ ہوتی ہے نا چونٹی کو کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پتریاں چاندی کی. اللہ نے ہم سب کو پھیلایا ہوا ہے. آج ہم جب اپنوں سے جدا ہوتے ہیں, ایک کو دوسرے کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں, دوسرے کو الگ ہوتے ہیں, تو ہمارے دل پہ کتنا ہاتھ پڑتا ہے. ایک وقت تو دل ہلتا ہے نا جب ماں بیٹی سے جدا ہوتی ہے یا بھائی بہن سے جدا ہوتا ہے. جتنے مرضی شکوے گلے ہوں, جب سامنے جائیں ایسے لگے گا کہ ان سے پیار ہی زیادہ کسی سے نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہم سب کو پھیلا دیا. اگر سارے ایک ہی گھر کے لوگ, ایک خاندان کے لوگ ایک ہی جگہ ہوتے تو دنیا کیسی ہوتی, چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف حالات سے گزارتا ہے, پھر ہم مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اسی طرح ایک دن تحشرون, اس دن حشر ہوگا, تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. دنیا میں بھی اب دیکھیے کہ خوشی غمی کے موقع پہ سب جمع ہوتے ہیں نا. اللہ نہ کرے خاندان میں کوئی موت ہو جائے تو دور دور کے لوگ بھی آتے ہیں. پھر کئی دفعہ ایسے رشتہ دار وہاں ملتے ہیں جن کو 10 سال سے نہیں ملے, 5 سے نہیں ملے. پھر آپ سناتے ہیں, اچھا سناؤ کیا رہا, اچھا سناؤ کیا حالات ہوئے, اچھا کیسا رہا, کیسا ہوا. قیامت کے میدان میں لوگ فارغ ہوں گے, اگلے پچھلے جمع ہوں گے. آپ سوچیے, آپ اپنے دادا کو جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں, ان کو قیامت کے دن دیکھیں گی, اور آپ کے دادا اپنے 10 پوتوں نواسوں کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ واہ میرے بعد اتنے میری نسل میں بچے ہو گئے. اس قیامت کے دن سب پچھلے اگلے پہچان کیے جائیں گے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. آج بھی اگر آپ حج کا منظر ذہن میں لائیں تو عرفات کا دن اسی کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے. دنیا کے مختلف حصوں کے لوگ ہوتے ہیں. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس کو آپ آج سے 10 سال پہلے جانتے تھے, لیکن ایسے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر دیتا ہے. تو قیامت کا دن کر کے یہ اصل میں اللہ کی قدرت ہے. اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام دیکھیں تو الباسط, پھیلانے والا, اور اللہ کی ذات جو ہے وہ سمیٹنے والی بھی ہے. یہ اس کی قدرتیں ہیں, اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر ہے. وہ زندہ بھی کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے. کرو زندہ تم کسی کو, کرو کسی کی موت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لو, کسی کی موت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لو. تم تو کسی کو نہ زندگی دے سکتے ہو نہ کسی کو مار سکتے ہو. ولخ اختلاف اللیل والنہار, اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا. کر سکتا کوئی؟ امپاسبل تھنگس کا یہاں ذکر ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ایسی ہیں جو کسی حد تک انسانوں میں بھی ہیں, لیکن یہ وہ صفات دکھ رہی ہیں کہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ موت دے دے یا زندگی دے دے, رات کو دن میں یا دن کو رات میں بدل دے. اللہ کی ذات کرتی ہے. تو افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ان آیتوں کو پڑھتے وقت اب سورہ حج کی آیت یاد کر لیجئے جو بالکل آخر میں تھی, کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. حقیقت یہ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کا وہ حق ادا نہیں کیا جو کہ کرنے کی ضرورت تھی. تو کیا میں نے اللہ کی قدر پہچانی؟ دیکھیے اصل یہ نقطہ ہے, معرفت, ایمان. کس طرح سے اللہ کی معرفت بندے کو نیکیوں پہ مائل کرتی ہے اور گناہوں سے دور کرتی ہے؟ کمی کہیں نہیں ہے, کمی یقین میں, کمی اجر میں. کیوں 10 دفعہ ترجمہ نہیں میں پڑھتی؟ یقین ہی کوئی نہیں. किसी को लग तो पता जाए कि मैं यहाँ से ज़रा जा कर शाम तक 4 घंटे किसी काउंटर पर खड़ी हो जाऊँ, मुझे 50 पाउंड मिल जाएंगे। हमारे बंदे जाके खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते, पाँव सूज जाएँ, नरम जूतियाँ पहन लें, करते हैं, क्योंकि 50 पाउंड हाथ में आते हैं। और जिसको यकीन हो कि होता कि इस ज़ुबान को हम चलाते हैं, इवन हाथ भी चलते थे। आप देखिए कि आपके और हमारे पास तो रिकॉर्डेड भी मौजूद हैं तर्जुमे। अगर सिर्फ हम रिकॉर्डिंग को प्ले करके खाना पकाते वक्त उसके साथ दोहराते रहें, कितना आसान है। आज के दौर में नेकी करना भी उतना ही आसान है जितना गुनाह करना आसान है, लेकिन यकीन की कमी, बड़े लखलोट हैं हम नेकियों के मामले में। इतना वक्त होता है हमारे पास, फिर हम रोते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए कि हम इस वक्त को अपनी इस दुनिया ही के पीछे लगाते हैं। तो फरमाया फलात आकिलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। और आप देखेंगे जहाँ भी बात ईजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आप कह सकते हैं कि लॉजिकल बात है, उसके एंड पे अफलात आकिलून आता है। आप यहाँ भी नोट करना शुरू कर दें, आगे भी देखेंगे, दुनिया और आखिरत के तकाबुल में अक्सर लफ्ज़ अफलात आकिलून आता है। यानी इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी मज़हब का नुमाइंदा होने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो तुम्हारी अक़ल बताती है कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन असल बात पता क्या है कि बल क़ालु मिस्ला मा क़ाला अलअव्वलून, बल्कि उन्होंने भी ये वही कुछ कहा जो इनसे पहले ने कहा था। यहाँ समझिए, लोग हमेशा वो करते हैं जो दूसरे करते हैं, दूसरों की बोली हुई बातें बोलते हैं, दूसरों की कही हुई बातें सुनते हैं, दूसरों के हाल पे चलते हैं। आज रिवाज हो जाए तो हम सब वही काम करने लग जाएंगे जो आज हमारे लिए मुमकिन नहीं। फैशन हो जाएगा, हम सब वही करने लगेंगे। अगर यहाँ आपके सामने 4 लोग आके कहें ना, कल मैंने 10 दफ़ा तर्जमा याद किया, उसके बाद तो मेरे काम यूँ हो गए, उसके बाद तो मेरी आवाज़ भी बैठी हुई थी वो ठीक हो गई, मेरे सर में दर्द था, मैंने तर्जमा शुरू किया, ठीक हो गया। अगर 4-6 लोग यहाँ आके शुरू करेंगे ना, तो कल देखिएगा कि 10-12 करेंगे, और परसों पर 24-25 करेंगे। इंसान की फितरत है कि मिसलमा क़ालल अव्वलून। बस अब इंसान ख़ुद को बेवकूफ़ समझता है वो नेकी करते हुए जो दूसरे नहीं कर रहे होते, कहते मैं क्यों टू मच हो जाऊँ, मुझे क्या। हालांकि आपको ये नहीं पता कि वही टू मच होने वाले असाबिकून अलअव्वलून कहलाते हैं। तो हमेशा अपने लिए बड़े गोल बनाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तबाह क्यों हुए, दूसरों की बोली बोली इन्होंने। कालू आइज़ा मितना बकुन्ना तो रोबम व इज़ामा, उन्होंने कहा क्या हम जब मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियाँ रह जाएंगी, इन्ना लमबूसून, तो क्या फिर हमें उठा लिया जाएगा। यानी बड़ी हैरत की बात है, पहले हम मरेंगे, फिर कुछ अरसा मिट्टी में रहेंगे तो मिट्टी में मिट्टी हो गए, और फिर जो हमारी हड्डियाँ थी बस वो बच जाएंगी और गोश्त चर्बी सारी मिट्टी खा जाएगी। तो क्या हमारी गली हुई हड्डियों से क्या दोबारा कोई उठा के खड़ा करेगा, इट्स इम्पॉसिबल। इसको कहते हैं कि यकीन की कमी। आप देखिए कि जब हमें इस बात का यकीन नहीं है ना कि हम दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, तो नेकी करना मुमकिन ही नहीं। कौन ऐसे गले में पैसे डाले कि जहाँ से कभी निकलते देखे ही नहीं, बस वो सेव 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 के नाम पे आगे से आगे की उम्मीदें। इसी तरह से लोगों का हाल यही होता है कि उनको अल्लाह के वादों पे एतबार करना, इस दुनिया के उधार को आखरत में चुकाने का वादा, इस पे एतबार बड़ा मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल। और आप देखिए कि ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है जो ये दलील देते हैं, बहुत अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मिट्टी हो के घुल के फिर कैसे उठेंगे। और बड़ी बात है, ये तो तुम बस ऐसे ही कहते रहते हो, लक़द व इदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु, इसी की धमकी तो हमें भी दी जा रही है, इससे पहले हमारे बाप दादा को भी दी गई। यानी आप देखिए किस तरह, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना किसी के मुँह लगना, नबी के मुँह लग रहे हैं कि देखो बार बार हमें कहते हो मर के जियोगे, आज तक हमारे बाप दादा तो उठ के आए नहीं, 1000 साल हो गया, 2000 हो गए, 3000 हो गए, किधर हैं जो हमारे अगले आते। जैसे ये आज की बात हो, कोई कहे कि अच्छा जी 2014 तो आ गया, अभी तक तो क़यामत आई कोई नहीं, अभी तक तो कोई एक मुर्दा उठ के कब्र से आता नहीं दिखा, तो तुम बताओ कि ये होगा कब। यानी मजाक उड़ाने का अंदाज़ है कि ये सिर्फ झूठे वादे हैं, ये सियासी वादे हैं, ये बातें कभी पूरी नहीं हुई। हमारे बाप दादा भी ये धमकियाँ सुन के चले गए, अब तुम हमें भी कह रहे हो इन हाजा इल्ला सातीरुल अव्वलीन, ये कुछ नहीं मगर किस्से हैं अगले लोगों के। यहाँ आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि ये सिर्फ बातें हैं, जिसका हम कहते हैं ना ये ढोंग है, असातीर के नीचे लिख लें ढोंग, क्योंकि असातीर का लफ्ज़ जो है ना अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ तरह से आता है, अस्तूरतुन की जमा है, अस्तूरतुन असातीर, ठीक है। और आप देखिए कि उर्दू को अगर आप देखें, अरबी को देखें असातीर अस्तूरा, और इंग्लिश में लिख के देखें तो स्टोरी स्टोरी स्तूरा स्तूरी, ऐसे लगता है कि उसी का लफ्ज़ है। फे जैसे वो कहते हैं ना फे टॉक, झूठी कहानियाँ, ऐसी पुरानी बातें जिसको हमारे यहाँ लोक दास्तान कहते हैं। कहते थे ये बातें हैं सिर्फ बनी हुई बात और कुछ, एक मिथ है, क्यामत आनी है, आएगी देखेगी ये होगा वो होगी, कहानी असातीरुल अव्वलीन। इस तरह से ये लफ्ज़ है कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि उनको लगता है ये फिक्शन है, लफ्ज़ फिक्शन भी लिख सकते हैं अस्तूरा के नीचे, क्योंकि झूठी कहानी को कहते हैं। कहते थे ये कुछ बातें नहीं, ये सिर्फ तुम मौलवियों ने बातें बनाई हुई हैं, तुम हमें खुश देखना नहीं चाहते, तुम्हें हमारी खुशियाँ रास नहीं, ना तुम खुद जीतते हो खुशियों में ना हमें, ना खुद इंजॉय करते ना हमें करने देते हो, और तुम चाहते हो कि बस हम रोज़ रोते धोते ही रह जाएं, तो बस होना हुआ कुछ नहीं। आज भी देखिए अपने ज़ुबान हाल से इंसानियत यही कहती हुई दिखती है, देखेंगे जब होगा। अच्छा चलो चले ठीक है, बहुत पता है, सब पता है हमें। जब किसी की बात का यकीन नहीं होता ना, तो हम ऐसे ही कंधे उचकाते हैं। आप देखिए कि जब एक शख्स गलत काम करता है ना, तो उसके ऊपर एक नशा भी होता है झुठलाने का। आज हम चूंकि ये किताब के सफ़ों में लिखी हुई बात पढ़ते हैं ना, तो हमें इसकी वो अंदर की फीलिंग नहीं आती जो किसी के कलाम से सुनने के बाद आती है, जो कि यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला बयान कर रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप इसको उनके एक्शन में ले, अल्लाह के नबी उनके सामने गए, देखो डर जाओ बच जाओ ये नहीं, तो आगे से कंधे उचका के कहते हैं छोड़ो छोड़ो हमें इसकी कोई नहीं परवाह, ये कोई नहीं होना, ये ऐसे ही तुम लोगों ने बातें बनाई हुई हैं और बस ये कुछ नहीं, ये तो बस ऐसी बातें हैं। कल किसी एक यंग बच्ची है बिल्कुल, यानी नेबर में हमारे, ऐसे देखा हाय बाय की तो मैंने कहा इट्स कोल्ड नाउ, कहती कोल्ड है लेकिन इसके बावजूद मैं बाहर जाके सिगरेट पीने लगी हूँ ना, तो मैंने उसे कहा कि तुम सिगरेट पीती हो, कहती यस, बड़े ऐसे जैसे मुझे वो उसका स्टाइल इस लफ्ज़ से समझ आ रहा है, तो मैंने कहा तुम्हें पता कि ये हार्मफुल, कहती यस आई नो आई डू एंड आई विल डू, एंड कंधे उचकाती हंसती हुई चली गई कि मुझे पता है सिगरेट पीना बुरी बात है, मैं पीती हूँ एंड आई विल डू। उसने इतने यकीन से कहा कि मेरे दिल से हुक उठी जितना यकीन इस वक्त इसको इस काम के, अल्लाह करे हमें इस अपने कलाम का हो जाए। आई विल डू आई डू, मैं करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूंगी, मुझे पता मेरा इसमें नुकसान हो रहा है दुनिया का, कोई मेरे से नाराज़ है, बट मैं डू। और उसने बड़ी अदाज दिखाई, खूबसूरत लग रही थी वो ऐसी अदाएँ दिखाती हुई, यकीन करें कि मैंने दुआ दी कि अल्लाह इसको यही यकीन अपनी इस किताब पे दे दे। तो गुनाह का एक नशा होता है, उसको पता है बुरा है, मैं कर रही हूँ गलत, करती हूँ और आई विल डू, करती ही रहूँगी, ठीक है करिए कोई बात नहीं। तो जब किसी को झुठलाने को दिल करता है ना, तो इंसान इसी तरह की बातें करता है। फिर ये जो लफ्ज़ है ना सातीर, इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेना तो मुसत्तरतु मकतूबतुन, लिखना चाहें तो समझ आती है, लिख ले नहीं मतलब कि लिखी हुई हकायतें, उर्दू में हम कहते हैं ना हकायतें रिवायतें कहानियाँ, यही सारी बात है कि ये नकल दर नकल होती हुई चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तुम कहते रहो चलो ठीक है, तुम स्टबन हो ना तो अपनी बात में स्टबन रहो। अब ज़रा कुछ सवालों के जवाब दे दो, यहाँ से अब क्वेश्चन हैं, जैसे एक सेशन के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो कुल कह दीजिए, क्या कह दीजिए, लिमन इल अर्दू, किसकी है ये ज़मीन, जवाब दो, जिस ज़मीन पे गुनाह करते हो, जिस ज़मीन पे रहकर तुम अपने आप को मस्तियों में मसरूफ़ करते हो, बताओ हु ओन्स दिस, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस अर्थ, वमन फीहा, दूसरा क्वेश्चन, और कौन है ओनर उसका जो कि ज़मीन में, और ज़मीन में क्या कुछ है, आपकी नज़र पहाड़ों पे जाएगी, समंदर पे जाएगी, दरख्तों पे जाएगी, लेकिन क्या इस मन में अना नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तुम भी तो इस ज़मीन के ऊपर ही खड़े हो, तुम किसके हो, इन कुन तुम तालमुन, अगर तुम जानते हो, यानी जवाब दो क्या करते हो ज़रा बताओ, इसलिए कि ज़रूरत है इस बात की कि तुम खुद को अल्लाह का समझो। ये है असल प्रॉब्लम लोगों का कि वो खुद को अल्लाह का नहीं समझते। ली मन, अपने आप से पूछिए, अल्लाह भी तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना किसका है, तो आप खुद से पूछिए मैं किसकी हूँ। ये जुमला तो बड़ा आसान है कि इन्ना लिल्लाही, लेकिन ये कहना कि इन्नी लिल्ला, ये कितना मुश्किल है, हम कितना इस चीज़ को सोचते हैं। याद रखिए कि ये याद आ जाए ना, और ये याद रहे तो कभी भी ज़िंदगी में गफलत का पर्दा नहीं आएगा। आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि कब एक काम पूरा हो और जान छूटे। क्या मैं और आप कभी ये चाहते हैं कि हमारे शौहर हमें छोड़ दें? बस एक साल की शादी और ख़त्म। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी जान छोड़ के हमें अलग कर दें। तो बंदगी का रिश्ता बंदा कैसे छुड़ाए? अल्लाह की मैं हूँ, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है तो मरते दम तक करनी है। इन कुंतुम तालमून, और इसमें इल्म छुपा हुआ। और आप देखेंगे कि अब आखिरी आयतें ऐसी पुरसोस किस्म की है कि दिल चाहता है कि इंसान सुनते हुए रोए। ऐसा दिल पे चोट पड़ती है कि इनकी बेतनाई तो देखो, सयकूलून लिल्लाह, जानते बूझते अनजान है, अनकरीब कहेंगे अल्लाह की है, हाँ अल्लाह का सब कुछ, धड़ल्ले से कहेंगे हाँ हमें पता है सब अल्लाह ने पैदा किया है, यह सब हमें पता है गॉड है। तो कुल अफला तज़क्करून, फिर कह दो क्या तुम नहीं नसीहत पाते? देखिए कहीं कहा जा रहा है इन कुंतुम तालमून, अब यहाँ आ रहा अफला तज़क्करून, कि किसी को कह देना इतना ही कि हाँ मानते हैं कि तुम खुदा हो, तुम रब हो, लेकिन उसकी बात ना मानना, क्या इस बात में कोई रब्त बनता है? नसीहत पकड़ो, गौर करो, फिर और सवालों के जवाब दो। कुल मर रब्बुस समावाति सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आप इनसे पूछिए कि सातों आसमानों का अर्श अज़ीम का मालिक कौन है? हु इज़ द टेक केयरर ऑफ दिस यूनिवर्स, कौन है जो इस बड़े अर्श का मालिक है? आप देखिए कि पहले लफ्ज़ में देखिए तो सातों आसमान, ज़रा इमेजिन तो कीजिए, सब समावात, एक ही आसमान नहीं हम पूरा देख पाते, अगर जहाँ नज़र दौड़ाएं ईस्ट से वेस्ट तक, जहाँ आप रहते हैं आपको एक ही आसमान दिखता है। किसका है? इज़ ओन्ड बाय अल्लाह। कभी किसी के घर की छत इतनी बड़ी हो तो हमारा दिल उसके आगे कैसे बैठने लगे? और जब अल्लाह की ज़ात का ये सब कुछ है, गौर ही नहीं शैतान असल में करने देता। कभी अपने घर की खिड़की से बाहर देखा करें, जिधर तक निगाह जाती है आपके, ये अल्लाह की है, ये अल्लाह की चीज़ है। और अर्श अज़ीम तो हमने देखा भी कोई नहीं है कि जिसके बारे में इतना हुसन आता है रिवायात में, कि अर्श के ऊपर से सोने की टिड़ियाँ बरसती रहती हैं हर वक्त। क्या वो फैंटसी होगी और क्या वो एक मैजिक लैंड होगी जो अल्लाह का अर्श है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक गए, तो सिर्फ सिदरतुल मुंतहा का मंजर अगर आप पढ़ें हदीसों में, तो बिल्कुल ऐसे इमेजिनेशन में तब किसी फैंटसी लैंड में चले गए। फरिश्तों की आवाज़ें और तस्बीहात की आवाज़ें, और कहीं सोने की टिड़ियाँ बरस रही हैं, और कहीं गोल्डन रंग का तूबा का दरख्त है जिसकी शाखें सोने की हैं और जिसके फल लटक रहे हैं। इतनी खूबसूरत कायनात बनाने वाले ने सोचिए कि अपना ठिकाना कैसा रखा होगा। वो मालिकुल मुल्क, और हम उसको नहीं जानते, अभी तो पहचान भी नहीं पूरी हुई। इसीलिए तो अफ़क़ुल अफ़ला तत्तकून, फिर इसीलिए तो डरते भी तो नहीं हो ना, फिर तुम्हें उससे खौफ कहाँ आता है? सारी दुनिया का डर है, चार लोग हमारे घर आने हो हमारी जान पर बनी होती है, किसी को हमने सामना करना हो हमारी जान पर बनी होती है, एक हमने इमिग्रेशन से गुजरना हो हाथ पाँव फूल रहे होते हैं। अल्लाह से कितना डरते हैं, किसी को मत पूछें। देखिए ये अब आखिरी सपारे जो आधे कुरान के बाद चल रहे ना, बस आप और आपका रब, कोई तीसरा बंदा आपकी सोचों में ना रहे। भूल जाए सारी दोस्तों को, सारे ख़ानदान के लोगों को, रिश्तेदारों को, फुला ऐसा नहीं, मैं कैसी हूँ, खुद को तोड़ मोड़ के इस तरह गूंद का बना लें कि जैसा अल्लाह चाहता है वैसी शक्ल बना लें, वरना कुरान कुछ नहीं देगा। जिस फॉर्म में आज है ना, इसी में प्रिजर्व हो जाएंगे। पहला कुरान बंदे की असल खोल के सामने रखता है। अगली दफ़ा भी आप पढ़ेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये जो कुरान है ना इस वक्त का आपका, ये आपका मुस्तकबिल मुतय्यन करता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसके बाद अमल करते हैं ज़्यादा, तज़किया तो होता रहता है, लेकिन एक ज़ाहिर जो चेंजेस आनी होती है ना, वो आ जाती हैं पहली दफ़ा पढ़ के। अगर आप में से कोई पर्दा कर लेगा तो कर लेगा, अगर आप में से किसी की तहज्जुद शुरू हो गई तो हो गई, और इसी तरह सो ऑन, आगे आगे जाके तो कैफियत बदल जाती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे अमल करना आसान कर दे, लेकिन याद रखिए कि मुंह से कह देना कि सयकूलून लिल्लाह, ये और कहानी है, और दिल ज़ुबान को साथ रख कर कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बिल्कुल अलग कहानी है। इस दुनिया और माफीहा का खालिक और मालिक अल्लाह को मानना, अर्श और फर्श का मालिक उसको मानना, और इसके साथ फिर माल और दौलत का बुत पूजना, रस्म और रिवाज के बुतों के पीछे मरना, और ख़ानदान और बिरादरी का खौफ खाना, ये देवी देवताओं से कोई छोटे बुत नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े बुत हैं। अल्लाह कहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, क्या तुम्हें मेरा ज़रा भी खौफ नहीं? कुल मम बियदिही मलकूत, ये बताओ कि किसके इख्तियार में है बादशाही। एक लफ्ज़ होता है मलक, एक होता है मालिक। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है अल मालिक, लेकिन मालिक अल मुल्क भी अल्लाह का नाम है। कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके। यहाँ लफ्ज़ मलकूत है, मुबालगे का सीगा है, एग्जैजुरेशन है। अफ़लु तफदील, ये भी तो कहा जा सकता है कि किसके हाथ में है बादशाहत, लेकिन मलक की बजाय, मलकियत की बजाय मलकूत बादशाहत किसके हाथ में बताओ। और आप देखिए कि जिसके हाथ में बादशाहत होती है, अमूमन दुनिया में जो बादशाह होते हैं वो भी हमें ज़ाहर लगते ही हैं कि आज़ाद है, लेकिन एक ख़ास हद के बाद वो भी आज़ाद नहीं होते। उनको भी वज़ीरों से मशवरा करना होता है, उनको भी कैबिनेट को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी बादशाहत वाली है कि जिसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। आगे आप देखिए अल्लाह ताला की वर्किंग मेथडोलॉजी, कि ना सिर्फ ये कि उसके हाथ में बादशाहत, क्योंकि बाज़ दफ़ा दुनिया में सिर्फ इख्तियार ही होता है आपके हाथ में, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। जबकि अल्लाह की ज़ात क्या है, वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। सारी दुनिया के धुतकारे हुए और परेशान लोगों को अगर आखिर पनाह मिली तो तेरे दामने रहमत में मिली। वो कहते हैं ना मिली तो कहीं ना मिली, जो मिली मुझ गुनाहगार को पनाह तो तेरे दामने रहमत में मिली। इसीलिए हम हर वक्त कुरान पढ़ने से पहले पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह मुझे इस ज़ालिम से बचा, इस दुश्मन से बचा। मैं बार बार ख़ुद को सीधे रास्ते पे लाती हूँ, ये बार बार मुझे भटकाता है। क्या सुबह का आगाज़ ही हमारा गलत फ़ैसलों से नहीं होता? सुबह उठने से लेके अब तक कितने गुनाह मैंने किए हैं लिखिए। आप कहेंगे मैंने तो कोई किया ही नहीं, मैं तो बस सुबह उठ के इधर आ गई। आना किस वक्त, आई किस वक्त, कितना करके आना था काम, कितना किया, क्या लिया क्या दिया, क्या ये मेरे गुनाह नहीं है? क्या उन गुनाहों के साथ अल्लाह पूरी रहमत मुझे दे दे? फिर वो तकलीफ़ों और बीमारियों और परेशानियों और आजमाइशों की सूरत में जब हमारे सर पे मुसल्लत होती हैं तो हम कहते हैं पता नहीं अन्ना लकी हरी कहाँ से आ गया भाई। कहो तुम्हारे अपने हाथों के मामले हैं। याद रखिए अल्लाह ताला हमारे से जुल्म नहीं करता। वह हुआ युजीरु, और इसका अपोजिट भी देख लें, अगर वो पकड़ ले तुमको तो वला युजार वाले। ये जो यजीर और युजार के जौर से, जवेरिया जौर पनाह को कहते हैं, हमसाय को कहते हैं ना जवार, जवेरिया हमसाई। तो हमसाया क्या होता है? उसका आपका साया एक होता है, बीच की दीवार सांझी होती है। अमूमन हमसाए ही मुश्किल वक्तों में काम आते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं पकड़ूं तो जाओ फिर कौन है जो मेरे मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। इमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफला, जब अल्लाह ज़र्र देता है सारी दुनिया के डॉक्टर परेशान होते हैं, बीमारी समझ नहीं आती, दूर कब होती है? जब अल्लाह चाहे। इस तरह के हालात, इस तरह के मामले देखें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती बीमारी क्या है। हर डॉक्टर बेजार, हर हकीम को आजमा लिया, एलोपैथी हेमोपैथी, और लाशौरी तौर पे पता लगता है कि कोई एक बड़ी सख्त बीमारी है बच्चे को, और बाद में एकदम आप देखते हैं सब ठीक हो जाता है। कौन? वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म है, इस इल्म को हासिल करो। आप देखें कि इल्म का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये इल्म का पानी आपके मेरे दिल को नरम करता है, और आज इससे लोग कितना दूर है। कुरान का कोई भी इल्म हम हासिल करें, आप इसकी तजवीद करें हासिल, आप इसको या हिफ्ज़ करें, इन सब का गोल ये है कि आपको इस कुरान की समझ आ जाए। हाफिज़ इसलिए हिफ्ज़ करें कि मुझे कुरान ना खोलना पड़े, मैं अपने हाफ़ज़े से पढ़ता जाऊँ और अमल करता जाऊँ। अच्छी तजवीद पढ़ने वाला क्या सोचकर अच्छा तजवीद से कुरान पढ़े कि सही लफ्ज़ों में पढ़ूँ और वो मेरे दिल पे असर करे और मैं अमल करूँ। कुरान का जो बुनियादी गोल है ना, वो इसको इन कुंतुम तालमून, इल्म हासिल करना है। लेकिन लोगों का हाल जो है वो क्या है? अल्लाह ताला आयत 89 में फरमाते हैं सयकूलूना लिल्लाह, फिर कहते हैं ये सब अल्लाह का, यानी ये सब कुछ पनाह देने का काम और उसके खिलाफ पनाह ना ली जानी, ये सब अल्लाह के इख्तियार आता है, यानी ढिटाई से जवाब देते हैं। और आप देखिए कि ये सारी बातें मानते रहे तो फिर अल्लाह को इन पे गुस्सा क्यों है? तौहीद रबूबियत को मान रहे हैं, पीछे भी बात हुई थी, तौहीद रबूबियत और चीज़ है और तौहीद अलूहियत और चीज़ है। अल्लाह को रब बनाना, क्रिएटर गॉड मानना, इट्स वेरी ईजी, प्रॉब्लम भी कोई नहीं इसके रास्ते में। मसला सबसे बड़ा ये है اللہ کو معبود بنانا، اللہ الوہیت کے درجے پہ رکھنا، زندگی میں اس کی ضرورت کو محسوس کرنا، اس پہ آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم اونر گاڈ نہیں مانیں گے، کیونکہ اونر ہے تو پوچھے گا، حساب لینے والا نہیں مانتے، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ نہیں مانتے۔ کاقل انفان نہ تسخرون، پھر ان سے بتاؤ تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے، یہ تم مسحور کیوں ہو گئے ہو، کس کے سحر میں آ گئے ہو، ساری باتیں غلط ہیں، یہ جو تم نے خود کو جھوٹی تسلیاں دی ہوئی ہیں نا، اصل حقیقت آخری آیت میں اب کھل رہی ہے۔ بل میں نے بل کے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، تمہارا پرابلم ان میں سے کچھ بھی نہیں جو اوپر پوچھا ہے، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اتیناہم بالحق، ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ اصل ان کی چڑ جو ہے نا حق کے ساتھ ہے، ان کو باطل اچھا لگتا ہے، ان کو ریالٹی نہیں اچھی لگتی، ان کو امیجنیٹری چیزوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، فکشن اچھا لگتا ہے۔ حق ان کے عمل میں چوٹ ڈالتا ہے، حق ان کی خواہشوں کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، حق ان کی مستیوں کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ان کو حق والی زندگی، سچ والی زندگی پسند ہی نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور البتہ یہ جھوٹے ہیں، بس اصل کہانی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہاں الحق سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن کے جو مختلف نام آتے ہیں وہ اس میں ایک نام حق ہے، تو قرآن کیا، ہم ان کے پاس حق لے کر آئے، یہ کتاب حق کے مطابق باتیں کرتی ہوئی ان کے سامنے آتی ہے، اس لیے ان کو یہ اچھی ہی نہیں لگتی۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے، آپ اپنے اوپر لیں، بالکل اپنے آپ پر لیں، اگر آپ اپنی دوستوں کو اجازت دے دیں کہ آپ کے بارے میں وہ جو کچھ سوچتی ہیں دل سے وہ آپ کے سامنے رکھیں، سچ بتاؤں میں آپ کو، ایک ہفتے سے زیادہ آپ کی دوستی نہیں رہے گی اپنی دوستوں سے، جو وہ آپ کے بارے میں دل میں سوچتی ہیں، جو حقیقت میں آپ کی ریالٹی ہے اور سچ ہے، یعنی کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اگر ہمارے قریب رہنے والے ہمارے بارے میں پورا سچ کھول دیں تو ہم بہت زیادہ دن ان کے ساتھ نہ رہیں۔ اس کے برعکس آپ کسی سے کہیں کہ آؤ ذرا میری تعریف کرو، پھر وہ آپ کی تعریفیں کریں، پھر آپ کے گن گائیں، پھر یہ وہ کریں، تو آپ دیکھیے ذرا آپ کا دل جائے گا، دن تو دن، رات کو بھی ان کے سامنے بیٹھے رہیں۔ یہی قرآن کے ساتھ لوگوں کا مسئلہ ہے، قرآن لوگوں کو چہرہ دکھاتا ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں چوکے دھبے دکھتے ہیں، ان دھبوں کو دیکھنے کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سن لائٹ میں اپنے فیس کو دیکھا ہو؟ نہ دیکھا ہو تو آج جا کے دیکھیے گا، اور اگر ممکن ہو گھر میں ہو کوئی بڑا مرر لے لیں، میگنیفائنگ مرر، اور صرف آپ اس میں اپنا فیس دیکھیں سن لائٹ میں، میرا نہیں خیال آپ 2, 4, 10 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ سکیں، اور اس کے بعد آپ گھر کے ڈریسنگ روم میں آئیں اور ڈم لائٹیں ٹونکلی ٹونکلی کر کے پھر ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ کتنی دیر تک شیشے سے ہٹیں گے نہیں۔ قرآن آپ کو ریئل فیس دکھاتا ہے، اور یہ وہی فیس ہے جو قیامت کے دن رب کو کرنا ہے، اسی کا ذکر اب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبمیشن ٹھیک ہے جی؟ آپ زنیرہ، کیا دل پہ اللہ کی طاقت کا ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ جی آپ فرزانہ، ہمیں اپنا اصل چہرہ دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے ہے تو اصل وہی نا، نہیں دیکھیں گے تو کیا بدل جائے گا، دوسروں کو تو وہی دکھتا ہے نا، تو خود اپنے آئینے دیکھنے۔ یہ ایک تو باتیں بیچ میں سامنے نظر میں آ گئیں، اس کا ذکر کر دیتی ہوں۔ آئی 67 میں ہم نے سامرن کی بات پڑھی تھی کہ راتوں کی قصہ گوئی اور کہانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ لوگوں کو رات کو نہیں جاگنے دیتے تھے، کسی کو رات کو دیر تک جاگتا دیکھتے تو کہتے سو جاؤ، شاید تمہیں تہجد نصیب ہو جائے، وقت پہ سو جاؤ تاکہ سحری میں یعنی تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ سو جاؤ شاید فجر ہی نصیب ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے سامرن کیسی ہے، آج ہماری زندگی انہی چیزوں میں کھوئی ہوئی ہے نا، تو ہمیشہ اپنے معمولات کو ٹھیک کریں گے تو تبھی بات بنے گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح نشے کا ایڈکٹڈ ہوتا ہے نا، اس کو نشہ چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، اسی طرح انٹرٹینمنٹ بھی ایک نشہ ہے، ایسی فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں بیکار، ख़ानदानी सियासत, चलो देखें पाकिस्तान में क्या हुआ है, चिट चैट उधर की उधर, हाँ की उधर की हाँ की। अच्छी बात है आप रब्ता रखें रिश्तेदारों से, लेकिन बामकसद हो। और इसमें एक बहुत ही अच्छा, बल्कि कल किसी ने भेजा था, इमाम शुरैम ने एक खुतबा दिया आजकल में, तो जो मैं देखती हूँ कि पूरी दुनिया के मसाइल होते हैं वो फिर हरम वालों तक भी पहुँचते हैं, तो जिसका खुलासा बता देती हूँ ताकि ये शायद हम में से किसी की सलाह का ज़रिया बन जाए कि किस तरह से यानी आज हम लोग वक्त ज़ाया करते हैं, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने जो हमें मीडियम्स दिए हुए उन मीडियम में नेट इंटरनेट और वो है। पढ़ के सुना देती हूँ तो शायद उनकी बात में ज़्यादा असर हो, कि उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक खुतबे में ये जो ख़ास तौर पे आज इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोगों का हो गया है, व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक वगैरह, इसके बारे में एक मैसेज दिया है कि अगर हम वाकई इस पर गौर व फिक्र करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की नज़र आ सकती हैं। खुलासा उसका ये है कि जितना वक्त आजकल हम इन चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो नहीं, जिस तरह हर वक्त हमारा इस पर हाथ होता है, अगर इसी तरह हमारा हाथ कुरान पे हो, जितनी फिक्र हमें हर वक्त सेल फ़ोन को अटेंड करने की और इन मैसेजेस को देने की, और बाज़ दफ़ा तो रातों को भी नहीं सोते, इतना सोने देते, मजबूरी और बात है, फ़ायदे की चीज़ें भी ये बहुत सारी हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। ये पढ़ के सुना देती हूँ। इमामुल हरमुल मक्की शेख सऊद शुरैम ने खुतबा दिया, खुतबा जुम्मा, कहते हैं कि जो आदमी ये ख्याल नहीं रखता कि इसकी ज़िंदगी में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के आने के बाद क्या मनफी तब्दीलियाँ आई हैं, इसको क्या करना चाहिए, इसको मुलाहजा कीजिए। कहते हैं कि ये सब कुछ इंसानी अकल के लिए एक फिक्री यलगार है, यानी उसके दिमाग के ऊपर सवार किया गया है, और इंतहाई अफसोस की बात है कि हम इन चीज़ों में मगन होकर दीन इस्लाम और ज़िक्र इलाही से दूर हो गए हैं, और ऐसे लगता है जैसे हम अल्लाह के नहीं बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के बंदे हैं। हमारे दिल पत्थर क्यों हो गए हैं? इसकी वजह यह कि व्हाट्सएप और दीगर चीज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक, दिल हिला देने वाले वाकयात और मनाजिर देख देख कर अब हमारे दिल ऐसे हादसों और वाकयात को देखने और सुनने के आदि हो चुके हैं जिन्होंने हमारे दिलों को सख्त कर दिया है, और अब हम पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। सच है ना, कभी किसी की लाश देखना और बात है, और अगर एक क्लिक पे आप 10-10 लाशें बच्चों की और बड़ों की दिखा दें तो असर ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे से जुदा और रिश्तेदारों से क्यों कट गए? क्योंकि हमारे रबते या व्हाट्सएप और दीगर चीज़ों तक महदूद हो गए हैं। हम इस गलत फहमी में मुबतला होकर इसी रबते को काफ़ी समझते हैं, लेकिन दीन इस्लाम ने हमें जो सिला रहमी का दर्स दिया है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। हम एक दूसरे की गीबत और बख्तानबाजी क्यों करते हैं जबकि हम आपस में बैठते नहीं, ना हमने एक दूसरे को देखा? इसकी वजह यह है कि जब भी कभी हमें कोई मैसेज मिले जिसमें किसी शख्सियत या किसी जमात या गिरोह पर तनकीद की गई हो, और यहाँ अगर मैं एक कमेंट दे दूँ कि सियासी लीडरों की बातें हों, तो फिर क्या होता है? हम बग़ैर किसी तहकीक के इसे सेंड करके गीबत और बख्तानबाजी में मुबतला हो जाते हैं, और इस वजह से हम कितने गुनाहगार होते हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हैं। हम दाएं हाथ से खाते हैं, यानी बाएं हाथ में मोबाइल है, दोस्तों की मजलिस में हो तो मोबाइल हमारे हाथ में, वालदैन के साथ गुफ्तगू करते हुए मोबाइल हमारे हाथों में, जबकि इनका एहतराम करना हम पर फ़र्ज़ है, ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो मोबाइल हमारे हाथों में होते हैं, हत्ता कि हमारी औलाद हमारी शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम हो गई है क्योंकि इस मोबाइल में मसरूफ़ होने की वजह से हम इनसे बेपरवाह हो गए हैं। इन सब चीज़ों से कुछ और इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सच है कि नहीं? हर वक्त हमारे हाथ में, मैंने तो अब सोचा कि फ़ोन पकड़ती थी अक्सर कभी घड़ी के लिए, अब दिल चाहता घड़ी पहन लो, ये फ़ोन से और क्या लेना होता है हर वक्त। और आप देखिए कि ये जितनी भी चीज़ों के नाम लिए हैं ये एक नेमत है हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें नेमत हैं, सच्ची जो बात है। व्हाट्सएप कह लें या वाइबर कह लें, अगर आप इसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ख़ानदानी रबता भी अच्छा है, अगर आप फैमिली का एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे आपको अपने बच्चों, भाइयों, भतीजों, बहनों, उनसे रबता रहता है, अच्छा मैसेज कन्वे करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात कि बीवी सो रही है और मियाँ उस वक्त भी कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, आजकल हर तरफ ये फितने हैं, टाइम नहीं देते। पहले तो कहती थी बीवियाँ हम बात कर रहे हैं ये टीवी देखते रहते हैं, अब टीवी तो कई के दिन तक खुलता ही नहीं है, ज़रूरत ही कोई नहीं, हर एक का टीवी उसके हाथ में, एक कमरे में चार लोग हैं तो हर एक अपनी छोटी सी स्क्रीन के साथ, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है तो कोई उछल रहा है। खैर, इमाम सुदेस सऊद शरम ने फरमाया, जो इतने नुकसान के बाद भी इन चीज़ों के दिफा में बात करता है तो मैं इसको फजूल समझता हूँ। इन इलेक्ट्रॉनिक अशिया में तरक्की से पहले मोबाइल को इतनी अहमियत हासिल नहीं थी, अब एक घंटा हम मोबाइल से दूर हो जाएं تمہاری جان پہ بن جاتی ہے، کاش کہ ہمیں اتنی فکر نماز اور قرآن کی لگ جائے۔ کوئی ہے جو ان تمام باتوں کا انکار کر سکے؟ کسی کو نہیں پتا کہ ان چیزوں کے آنے سے ہماری زندگی میں یہ منفی تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ذرا سوچیں، قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ کیا واٹس ایپ، کیا ٹویٹر؟ ہمیں اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ کوئی چیز بھی ہمارے دین سے غافل نہ کر سکے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری یاد سے غفلت کی، میں دنیا میں اس کا جینا محال کر دوں گا۔ تو بہرحال دعا کیجئے کہ یہ سب چیزیں ہم خیر کے ساتھ استعمال کریں۔